माहिरा ने कहा, मगर माफी मांगने से रिजेक्शन की इंसल्ट कम तो नहीं हो सकती, वो तो हुई है ना। हमारी रिजेक्शन की इंसल्ट तब होती है जब सामने वाला ख्वाहिश के काबिल हो, नूर ने कहा। अब अरमान की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं रही, मैं उसे सीधे रिजेक्ट कर रही थी। माहिरा का चेहरा तप रहा था, वो रेहाना बेगम के सामने खड़ी थी, वरना नूर उसे दिन भर की बेइज्जती का डबल या ट्रिपल बदला दे सकती थी। सादिया को लगा कि अब बात बिगड़ रही है। माहिरा, तुम्हें भी भूख लगी होगी, मैं कुछ चाय मंगवाती हूँ, सादिया ने कहा। नूर की कही बातों को सादिया संभालने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माहिरा ने साफ शब्दों में कह दिया। वो गुस्से में खड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। मुझे अरमान ने बताया था कि सेलिब्रेशन यहाँ रखा जाएगा, इसीलिए मैं आई थी, माहिरा ने थोड़ा तल्ख लहजे में कहा। अच्छा हुआ तुम आ गई, रेहान ने शांति से कहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझसे? माहिरा हैरान भी हुई और अंदर ही अंदर खुश भी। रेहान उसे हमेशा से पसंद था और आज पहली बार उसने खुद उसे बातचीत के लिए रोका था। रेहान लोगों को संभालना जानता था, उसे समझ आ रहा था कि अगर माहिरा इस वक्त नाराज होकर चली गई तो सेलिब्रेशन का पूरा माहौल बिगड़ सकता था। ऊपर से नूर की कही हुई बातें भी माहौल को और तनावपूर्ण बना चुकी थी, इसलिए उसने बात को हल्के और समझदारी से मोड़ दिया। हाँ, रेहान ने सहज लहजे में कहा, दरअसल पार्टी के ड्रेस कोड के बारे में बात करनी थी, कौन सा कलर होगा, कौन सी थीम रखेंगे, इन्हीं सब बातों पर तुमसे राय लेना चाहता था, बैठकर आराम से बात करते हैं। ठीक है, माहिरा ने थोड़ी नरमी के साथ कहा। रेहान ने सादिया की तरफ देखते हुए कहा, सादिया, सबके लिए चाय और कुछ खाने पीने का इंतजाम करवा दो। सादिया ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे किचन की तरफ चली गई, मुलाजिमों को चाय के लिए कहने। रेहान ने माहिरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम सोच लेना, हम लोग फिर डिनर पर मिलेंगे, वहीं फाइनल कर लेंगे। इतना कहकर वो हॉल से बाहर जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो नूर के पास रुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, जरा कम बोला करो, ये कहकर वो चला गया। नूर उसकी बात पर चौंक गई, उसे समझ नहीं आया कि ये सलाह थी, चेतावनी थी या सिर्फ माहौल संभालने की कोशिश। माहिरा ने भी ये सब देख लिया था, उसने साफ देखा कि रेहान ने जाते हुए नूर से कुछ कहा। अब नूर को मिल रही अहमियत, सबका ध्यान, सबकी सुरक्षा, सबकी चिंता, ये सब माहिरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर जलन और असंतोष साफ दिखने लगा था। इकबाल घर पहुंच चुका था, लंबा सफर और दिन भर की उलझनों के बाद वो थका हुआ था। घर में दाखिल होते ही सुल्ताना बेगम ने उसके चेहरे की थकान और बेचैनी दोनों को महसूस कर लिया। नूर ठीक से पहुंच गई, उसने सबसे पहले यही पूछा। इकबाल ने भारी सांस लेकर कहा, हाँ पहुंच गई, फूफी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए नूर को फरीद भाई के घर ठहरना पड़ा। ये सुनते ही सुल्ताना बेगम के चेहरे पर हैरानी उभर आई। अजीब बात है, उसने धीरे से कहा, पहले तो फूफी ने कभी नहीं बताया कि वो इतनी बीमार है, कितनी बार फोन पर बात हुई, अब लगता है मेरी बेटी के जाते ही वो बीमार पड़ गई। इकबाल ने तुरंत उसे टोक दिया, ऐसा मत सोचो, कोई जानबूझकर थोड़ी बीमार होता है। मेरा मतलब वो नहीं था, सुल्ताना बेगम ने सफाई दी, बस इतना कि अगर वो कुछ दिन और ठीक रहती तो नूर वहां एडजस्ट हो जाती, फिर इतनी परेशानी नहीं होती। कोई बात नहीं, इकबाल ने उसे तसल्ली दी, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, उसके राज वही जानता है। उसने फूफी के घर में क्या हुआ था ना उनके दामाद रशीद का जिक्र किया, ना वहां की असहज फिजा के बारे में कुछ बताया, कुछ बातें हो जानबूझकर दिल में दबा गया। सुल्ताना बेगम कुछ पल चुप रही, फिर चिंता से बोली, अब बेटी पराए घर में रहेगी, मुझे इस बात की बहुत फिक्र हो रही है। पराया घर नहीं है, इकबाल ने ठोस लहजे में कहा, फरीद भाई का घर है, वहां नूर पूरी तरह से सेफ है, सुल्ताना बेगम ने धीरे से कहा। मेरा मतलब था, फरीद भाई का जवान बेटा है, जवान भतीजा है, इसी वजह से मैं चिंता कर रही थी, इकबाल ने उसे देखते हुए कहा। फरीद भाई के बेटे ने ही नूर की जिम्मेदारी ली है, फिर उसने कुछ और सख्ती से जोड़ा, और यूं समझो कि फूफी के घर से ज्यादा नूर फरीद भाई के घर में महफूज है। सुल्ताना बेगम ने एक पल रुककर पूछा, कोई बात हुई थी क्या फूफी के घर में? इकबाल का सब्र टूटने लगा। नहीं, उसने थोड़े थके और रूखे स्वर में कहा, तुम मुझसे सवाल ही करती रहोगी, मैं बहुत थक कर आया हूँ। सुल्ताना बेगम ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया, वो चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसके दिल दिमाग में एक हल्का सा शक जरूर जन्म ले चुका था। उधर फरीद के घर में डिनर का वक्त हो चुका था, माहिरा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, लेकिन रेहान खुद डिनर टाइम पर घर पर मौजूद नहीं था। टेबल पर नूर, सादिया, रेहाना बेगम और माहिरा चारों बैठकर खाना खा रही थी। पता करो रेहान कहाँ रह गया, रेहाना बेगम ने सादिया से पूछा, अभी तक आया क्यों नहीं? सादिया ने तुरंत रेहान को फोन किया, थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन रखा और बताया, अभी अभी वो रेस्टोरेंट से निकले हैं,
बस आ ही रहे होंगे। माहिरा को बात समझने में जरा भी देर नहीं लगी। रेहान ने खुद उसे यहाँ बुलाया था और खुद बाहर डिनर करने चला गया था। उसका मूड एकदम खराब हो गया। अगर डिनर बाहर ही करना था, माहिरा ने तंज भरे लहजे में कहा, तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। सादिया उसकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुरा दी। उसे ये अच्छा लग रहा था कि रेहान माहिरा को बुलाकर खुद मौजूद नहीं था। आ जाएगा, रेहाना बेगम ने शांत स्वर में कहा, तुम अपना डिनर खत्म करो। जहां रेहान को होना चाहिए था, माहिरा ने कहा, वो वहां नहीं है। फिर उसने थोड़ा अकड़ते हुए जोड़ा, मेरी एक क्लास है, मैं हर किसी के साथ खाने की टेबल शेयर नहीं करती। उसका इशारा साफ तौर पर नूर की तरफ था। नूर का चेहरा उतर गया। सादिया खाना खाते खाते चुपचाप रेहाना बेगम के चेहरे की तरफ देख रही थी। माहिरा का ये कहना सिर्फ नूर के लिए नहीं था, ये सीधा सीधा रेहाना बेगम की बेइज्जती थी। नूर वहां इसीलिए बैठी थी क्योंकि रेहान ने खुद कहा था, और माहिरा का ऐसा कहना दरअसल रेहान की बात को काटना था। रेहाना बेगम ने बिना कुछ कहे टेबल से उठते हुए कहा। रेहाना बेगम ने जाते जाते सादिया से कहा, और हाँ, जब माहिरा डिनर खत्म कर ले तो इसकी कॉफी मेरे कमरे में भेज देना। ये कहकर वो चली गई। अब टेबल पर सिर्फ तीनों रह गई थी। सादिया के चेहरे पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि वो समझ गई थी रेहाना बेगम ने माहिरा को अपने कमरे में अकेले बुलाया है, मतलब उसकी क्लास लगने वाली है। कुछ देर बाद माहिरा रेहाना बेगम के कमरे में चली गई। इधर किचन में सादिया कॉफी का पेस्ट बना रही थी। नूर वहीं पास की कुर्सी पर बैठी हुई थी। माहिरा कभी कभी बहुत रूड हो जाती है, सादिया ने हल्के लहजे में कहा। अभी तो उनका मूड मेरी वजह से ही खराब था, नूर बोली। तुमने भी तो अरमान के साथ क्या किया, सादिया ने हंसते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने, हद तो उनकी अम्मी करती हैं, नूर ने कहा। खुद अपने बेटे की शादी करवा दे तो दूसरों को जज करना बंद करें। अगर चाची जान का बस चले, सादिया मुस्कुराकर बोली, तो आज ही अरमान की शादी करवा दें। मगर अरमान बहुत डिमांडिंग है, उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मगर उस दिन ताई अम्मी कह रही थी, नूर ने याद करते हुए कहा, कि वो अपनी बहन की वजह से शादी नहीं कर रहा। सादिया ने थोड़ा सोचकर कहा, असल में अरमान को पता है कि उसे कैसी वाइफ चाहिए, और घर में कैसी लड़की आए वो तय करने वाली माही रही है। ऐसा भी तो हो सकता है, नूर ने धीरे से कहा, कि उसे कोई लड़की पसंद हो और वो माहिरा के कहने पर मना कर रहा हो। उसी वक्त रेहान और अरमान दोनों बाहर से अंदर आए थे। किचन के गेट पर पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। अंदर हो रही बातचीत, एक एक शब्द, सब उन्हें साफ सुनाई दे गया था। और वहीं से एक नहीं गलतफहमी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, यकीन के साथ कहा सादिया। अगर ऐसी कोई बात होती तो अरमान जरूर बताता।
अब ऐसा है या नहीं, नूर ने सोचते हुए कहा, ये तो अरमान ही बता सकता है। नहीं नहीं, तभी पीछे से अरमान की आवाज आई।